ते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 अध्याय का शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। श्लोक क्रमांक 24। शब्दों का परिचय। स्वर्ग न पार्थितः यस्य मनोजैः अमरप्रियः शृण्वद्भिः उपगायद्भिः। उत्तमश्लोक चेष्टितम्। स्वर्गो न पार्थितो यस्य सर्गो न पार्थितो यस्य मुनिजैरमरप्रियः मनुजैरमरप्रियः शृण्वद्वीरुपगायद्वीर् उत्तम श्लोक चेष्टितम्। उत्तम श्लोक चेष्टितम्। सर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैरुत्तम प्रियः मनुजैरमर प्रियः शृण्वद्वीरुपगायद्वीर् उत्तम श्लोक चेष्टितम्। सर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रियः शृण्वद्वीरुपगायद्वीर् उत्तम श्लोक चेष्टितम्। उत्तम श्लोक चेष्टितम्। स्वर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रिय उत्तम श्लोक चेष्टितम्। स्वर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रियः शृण्वन्ति उपदाय द्वीर् उत्तम श्लोक चेष्टितम्। स्वर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रियः शृण्वन्ति उपगायन्ति उत्तम श्लोक चेष्टितम्। सर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रिया शृण्वद्वीरुपगायद्वि उत्तम श्लोकचेष्टितम् सर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रिया उत्तम श्लोक चेष्टितम् स्वर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रियः शृण्वद्वीरुपगायद्वीर् उत्तम श्लोक चेष्टितम् मतम् सर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रियः शृण्वद्वीरुपगायद्वीर् उत्तम श्लोक चेष्टितम् सर्गो न पार्थियो यस्य मनुजैरमर प्रियः सर्वद्वीरुपगायद्वि उत्तम श्लोक चेष्टितम् शब्दों का स्वर्ग स्वर्गलोक का जीवन न नहीं पार्थितः इच्छा का विषय यस्य जिसका अम्बरीश महाराज का मनुजई नागरिकों प्रजाओं द्वारा अमर प्रिय देवताओं तक को परम प्रिय शृण्वद्वी सुनने के बाद सुनने के आदि उपगायद्वी तथा कीर्तन करने के आदि उत्तम श्लोक भगवान के चेष्टितम महिमामय कार्यकलापों के विषय में अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की आदित है। इस प्रकार वह कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। तात्पर्य वह शुद्ध भक्त जिसे भगवान के पवित्र नाम यश गुण रूप तथा साध सामान के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने का प्रशिक्षण मिल रहता है कभी भी स्वर्ग लोक जाने का इच्छुक नहीं रहता। भले ही ये देवताओं तक को भी अति प्रिय लगते हैं। नारायण परासर्वे न कृतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्यपि तुल्यार्थ दर्शिनः। भगवान नारायण की एकांतिक भक्ति में लगे भक्तगण जीवन की किसी भी परिस्थिति से कभी नहीं डरते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक लोक एक समान है। श्रीमद् भागवतम सत्वाध्याय 28 नंबर श्लोक में भक्त सदैव आध्यात्मिक जगत में रहता है, अतएव उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वह अकाम कहलाता है क्योंकि उससे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। क्योंकि महाराज अम्बरीश महाभागवत थे, अतएव उन्होंने अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दी थी कि उनकी प्रजा की रुचि किसी भौतिक वस्तु में यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख में भी नहीं रहती थी। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः संकर्षण कारण तुषाई गर्भोदसाई च पयोदिशाई शेषस्य यस्यां सह सकल सनित्यानन्दाक्षर रामं शरणं ममास्तु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने वलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद्भागवत कक्षा में सारे भक्तों को स्वागत है। सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, आप सब आशाई रहे आशाई थे कि कमल लोचन प्रभु आएंगे प्रवचन देने के लिए करके, और मैं बैठ गया क्योंकि कमल लोचन प्रभु का तबियत खराब है इसलिए उठे नहीं। और अचानक मैनेजर साहब आके बोले कि तुमको प्रवचन देना है तो इसलिए मुझे आना पड़ा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ उनके स्थान पर बैठने के लिए। और मैं सारे वैष्णवों से प्रार्थना करता हूँ कि वे आशीर्वाद दें इस प्रकार से अमल पुराण श्रीमद् भागवतम को जो भी श्रील प्रभुपाद जी ने बताए और उसको जिस प्रकार से समझ में आया उसको भक्तों के सामने प्रस्तुत करना करने के लिए। अगर इस दौरान किसी भी प्रकार का भाषानुगत यानी तथ्यानुगत त्रुटियां हो तो वे क्षमा करेंगे। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंद। तो जैसे हम सबको पता है श्रीमद् भागवतम के नौवें स्कंध का चौथे अध्याय चल रहा है। अध्याय का शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। ये विख्यात कथा है, कई बार आप लोगों ने या हम लोगों ने सुने हैं इसको कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज एक व्रत करते हैं और पारण का समय हो जाता है, दुर्वासा मुनि आते नहीं और पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। ये कथा अभी शुरू ही होने वाला है आगे जाकर। तो इस कथा के शुरुआत से पहले ही सुखदेव गोस्वामी कुछ श्लोकों में अम्बरीश महाराज की गुणगान करते हैं। ये अध्याय के शुरुआत में अम्बरीश महाराज की गुणगान करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अम्बरीश महाराज किस प्रकार से थे, महान भक्त थे, और साथ साथ में उनकी राज्य किस प्रकार का था, उनके राज्य की प्रजाएं किस प्रकार थे, इन सारे बातों को संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। आज का जो दो श्लोक हैं, खास करके 23 और 24, 23 में तात्पर्य नहीं है इसलिए 24 नंबर श्लोक हम लोगों ने दोहराए। इस श्लोक में, इन दोनों श्लोकों में खास करके अम्बरीश महाराज का गुणगान कैसे है उनकी प्रजाओं के, मतलब अम्बरीश महाराज की प्रजाओं का गुणगान किया गया है, जो कि इनडायरेक्टली अम्बरीश महाराज के ही गुणगान है ना। प्रजा का गुणगान मतलब राजा का गुणगान, तो ये दो श्लोकों में अम्बरीश महाराज की प्रजाओं का गुणगान किया गया है, 23 और 24। उसके अनेक, उसके पहले अनेकों श्लोकों में आप सब सुने हैं, हम सब सुने हैं किस प्रकार से अम्बरीश महाराज का गुणगान किया गया है। तो प्रारंभ करने से पहले 23 नंबर श्लोक को भी हम लोग थोड़ा उसके अनुवाद जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं उसको दोहराएंगे। मैं श्लोक को पढ़ूंगा। यस्य क्रतुषु गिर्वाणो सदस्यारित्विजो जनः तुल्यरूपाश्च निमीषा व्यदृश्यन्त सुवाससः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित विशेष रूप से होता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा ऊर्ध्व उद्वयुर वस्त्रों से बहुत अच्छी तरह से सज्जित थे और वे सब देवताओं की तरह लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। ये 23 नंबर श्लोक है। 24 नंबर श्लोक है, महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान की महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण के आदि थी, इस प्रकार वह कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। ये दो श्लोक। 23 नंबर श्लोक में बताए सुखदेव गोस्वामी कि यज्ञ में जो उपस्थित थे, आप सब सुने किस प्रकार से अम्बरीश महाराज अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, और अश्वमेध यज्ञ में जितने भी सारे मुनि ऋषिगण ब्राह्मण और साथ साथ में राज्य के सारे प्रजाएं उपस्थित थे, और ये जो प्रजाएं मुनि ऋषिगण ये सब कैसे दिख रहे थे, मानो कि देवताओं की तरह। 23 नंबर श्लोक में बताया गया ये कैसे दिख रहे थे, देवताओं की तरह, मानो कि देवता ही उपस्थित है यज्ञ में, इस श्लोक का तात्पर्य है। और 24 नंबर आज का श्लोक में क्या बताया गया, वो जो प्रजा यानी अम्बरीश महाराज जहां पर राज्य कर रहे थे उस राज्य की प्रजाएं वो कौन से कार्यकलापों में लिप्त थे, श्रवण और कीर्तन, श्रवण कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। इसीलिए क्योंकि वे श्रवण और कीर्तन में मग्न थे इसलिए देवताओं का प्रिय कौन सा जगह है, स्वर्ग। देवता लोग कहां पर रहना चाहते हैं, हमेशा स्वर्ग में। देवताओं को प्रिय जगह स्वर्ग को भी वो लोग नहीं चाहते थे, कौन, अम्बरीश महाराज के राज्य में निवास करने वाले प्रजा मनुजयी यानी मनु महाराज से आता है, क्योंकि हम सब मनुष्य मनु महाराज से आते हैं ना, मनुजयी अर्थात प्रजा, अम्बरीश महाराज की प्रजा। अम्बरीश महाराज की प्रजा श्रवण और कीर्तन में लगे रहने के कारण देवताओं का प्रिय स्वर्ग भी उनको अच्छा नहीं लगता है, या स्वर्ग जाने की इच्छा भी उनके अंदर नहीं है। तो ये दोनों श्लोक अम्बरीश महाराज की प्रजाओं का गुणगान है, या इनडायरेक्टली महाराज जी का गुणगान है। प्रजा श्रेष्ठ है किसके वजह से, राजा के वजह से ना, है ना। किसी देश का प्रजा बहुत अच्छा है तो उसी राजा का गुणगान होगा। किसी देश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, वो जो प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है वो कितना अच्छा संभाल रहा है राज्य या देश को, ऐसे कहते हैं ना, अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चलता है तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे प्रजाओं का गुणगान मतलब महाराज अम्बरीश महाराज जी का गुणगान हो रहा है। 23 नंबर श्लोक में यस्य क्रतुषु गिर्वाणे सदस्य ऋत्विजय जनः तुल्य रूपश्च निमिषाय व्यदृश्यन्त सुवासः। इस श्लोक में उनकी जो प्रजा या ब्राह्मण गण जो महाराज के अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित थे, उस अश्वमेध यज्ञ में जो उपस्थित थे उन लोगों को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये देवता तुल्य है, देवताओं जैसा है। ये देवताओं जैसा शब्द को लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत अच्छा सा प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं देवर इक्विवेलेंट टू देवता, वन कैनॉट से दैट द देवतास आर यूनिक बिकॉज दे आर आईज डू नॉट ब्लिंक। ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि देवता लोग इन लोगों से अलग थे। किन लोगों से? अम्बरीश महाराज की यज्ञ में उपस्थित लोगों से देवता लोग अलग थे करके कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं? कोई कोई बोल सकता है ना, देवता लोग जो है ना उनका पलक नहीं गिरता है, पता है? मुझे नहीं पता था, अभी पता लगा, देवताओं का पलक नहीं गिरता है, कभी ब्लिंक नहीं होता ऐसा ऐसा वे देवता लोग हैं। तो कोई कह सकता है ओ ये लोग तो सब मर्त्य में रहते हैं, इनका पलक गिरता है, देवता लोगों का तो पलक नहीं गिरता है। तो सुखदेव गोस्वामी का उस शब्द है वहां पर अनिमिषा, अनिमिषा शब्द को होता है निमिष, यानी ये जो पलक है वो नहीं गिरता है। तो अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित प्रजागणों का या ब्राह्मणों का या प्रजाओं का ये जो पलक है वो नहीं गिर रहा था। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किए थे कि लोग एकदम से देखकर एकदम चकित रह गए थे, आश्चर्यचकित रह गए थे, जितने भी प्रजा या जितने भी दर्शक उपस्थित थे, इसलिए उनका पलक नहीं गिर रहा था। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी या यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये देवता ही थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का भी पलक नहीं गिर रहा है। एट दिस सैक्रिफाइस द असेंबली स्टूड विथ अनब्लिंकिंग आईज ऑल्सो एट सीन सींग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैक्रिफाइस। ये अचंभित आश्चर्यजनक यज्ञ को देखकर वहां की प्रजाओं का पलक नहीं गिर रहा था, इसीलिए यहाँ के प्रजा देवता ही थे या देवताओं से भिन्न नहीं थे करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और देवता इमर्त्य में रहकर भी उनको देवता या किसको कहा जा सकता है जिनके अंदर देवताओं का गुण है ना? तो किसके अंदर सारे देवताओं का गुण आ सकता है? किसके अंदर सारे देवताओं का गुण आ सकता है? कौन बताएंगे? यशास्त्री भक्तिर भगवती अकिंचना, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है या जो कृष्ण की भक्त है उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं, है ना? तो उससे देवता कह सकते हैं। तो उस ये बात फिर से कहां सिद्ध हो रहा है? 24 नंबर श्लोक में। क्यों? क्योंकि 24 नंबर श्लोक में क्या कहा गया कि महाराज की जितने भी प्रजा है वो सब किसमें ज्यादातर निमग्न थे? भगवान की कथा की श्रवण और कीर्तन में। और भगवान की कथा और श्रवण में, कथा की श्रवण और कीर्तन में कौन लिप्त रहते हैं? भगवान की भक्त। और भगवान के भक्त जो कृष्ण की कथा और कथा कीर्तन में मग्न रहते हैं उनके अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज के नगर में या उनके राज्य में जो भी सारे प्रजा थे वे सारे उच्च कोटि के वैष्णव थे, देवता तुल्य, देवतुल्य। क्यों? क्योंकि एक ही क्वालिटी है, वो क्या है? श्रवण और कीर्तन। श्री कृष्ण की कथा गुण नाम गुण लीला इत्यादि का श्रवण और कीर्तन में वे लोग मग्न थे, अतः उनके अंदर सारे देवताओं का गुण परिलक्षित हो रहा था। इस बात को बताया गया है 23 नंबर श्लोक में। चौबीस नंबर श्लोक में सार रूप में यह है कि ये सारे जो प्रजा थे अम्बरीश महाराज के राज्य में ये सब स्वर्ग जाने के लिए इच्छा नहीं करते थे। स्वर्ग में क्या है? अत्यंत भोग। किस प्रकार का भोग या किस प्रकार का सुख? भौतिक सुख। बहुत अच्छे अच्छे भौतिक सुख है वहां पर, जितना भी चाहे उतना खाओ, टॉयलेट जाने की आवश्यकता नहीं है, जितना भी चाहे उतना भोग करो, बीमारी नहीं आएगी, है ना? भोगे रोग भयम। हम इस भौतिक संसार में या इस मर जगत में अगर किसी भी वस्तु का भोग करने जाएंगे अत्यधिक परिमाण में, तो अंततः को तो हमें किसका भय रहता है? रोग का, बीमारी निश्चित है। आप किसी भी प्रकार की भोग को लीजिए, चाहे वो स्त्री भोग हो, चाहे कोई खाने का पदार्थ हो, चाहे सोने का हो, कोई भी प्रकार की भोग को लेकर आप अत्यधिक परिमाण में उसको भोगने के लिए प्रयास करके देखिए, अंततः तो हमें क्या प्राप्त होगा? रोग प्राप्त हो जाएगा। भोगे रोग भयम, और ये जो भोगे रोग भयम वो वहां पर नहीं है। जो वस्तु भोगना है और जितनी मात्रा में भोगना है वो स्वर्ग में भोग सकते हैं, वो स्वर्ग में भोग सकते हैं। बूढ़ा भी नहीं होते हैं वहां पर, कमजोरी नहीं आता है वहां पर, केवल भोग ही भोग है। इस प्रकार की सुख की सामग्रियां जहां पर उपलब्ध है वहां पर देवता लोग रहने के लिए इच्छा करते हैं, वो देवताओं का प्रिय जगह है, देवताओं का स्वर्ग। इस प्रकार की जगह में जाने के लिए भी जो प्रजागण है अम्बरीश महाराज के, वे इच्छुक नहीं है। क्यों इच्छुक नहीं है? अरे वहां पर जाएगा तो सब कुछ मिलेगा उन वहां का, जहां इस मर्त्य लोक में उन्हें नहीं प्राप्त होता वो सब तो वहां मिलेगा सुख, वहां जाने के लिए इच्छा नहीं है। उसका क्या मतलब? क्या अम्बरीश महाराज के राज्य में वो सारा भौतिक सुख मिलता था उनको? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं कि क्या इस भौतिक संसार में स्वर्ग के जितने भी भौतिक सुख है यहाँ पे मिलता था उनको? शायद इसलिए वो लोग जाना नहीं चाहते थे। लेकिन नहीं, वो सारा भौतिक सुख नहीं मिल रहा था, उससे भी बढ़कर कुछ मिलता था। वो क्या था? श्री कृष्ण की भजन और कीर्तन है, या कृष्ण की भक्ति में जो सुख है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर स्तर पे, हर स्टेप में, हर कदम में वो बढ़ता रहता है। भौतिक सुख ऐसा नहीं बढ़ता है हर कदम में, भौतिक सुख हर कदम में या जैसे ही सुख भोगने जाएंगे वो खत्म हो जाता है। आदि अंत वंत कौनते, आदि होते ही अंत हो जाता है, ये भौतिक सुख है। मगर आध्यात्मिक सुख या कृष्ण की भक्ति में जो आनंद मिलता है वो किस प्रकार का आनंद है? ये हर स्टेप में वो बढ़ता रहता है। तो अम्बरीश महाराज की प्रजाओं को भौतिक सुख नहीं मिल रहा था जो स्वर्ग में मिलता है देवताओं को, उन्हें कौन सा सुख मिल रहा था? उस भौतिक सुख से भी और ऊंचे कोटि का सुख यहाँ पे प्राप्त हो रहा था इस भौतिक संसार में रहकर भी। वो क्या था? कृष्ण की भक्ति करने से जो आनंद प्राप्त होता है, कृष्ण की चरण कमलों की स्मरण करने से जो आनंद प्राप्त होता है, उनकी सेवा करने से जो आनंद प्राप्त होता है, ये भौतिक सुख से भी ऊंचे कोटि का सुख है, ऊंचे कोटि का आनंद है, ऊंचे कोटि का मिठास है। समस्या क्या है हम लोगों के लिए? क्योंकि बीमारी हुआ है ना, वो उदाहरण पता है ना, हम सबको ऐसे बीमारी हुआ है कि पीलिया, उस बीमारी होने पर मीठा खाने पर हमको मीठापन का महसूस नहीं होता है, वो बीमारी हमें हुआ है। अतः इतना आनंदित या इतना मिठास वस्तु है कृष्ण की सेवा पूजा या कृष्ण की भक्ति, फिर भी हम उसका आस्वादन नहीं कर पाते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए? उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ हमें करना चाहिए। तो एक दिन क्या होगा, जैसे पीलिया बीमारी वाले व्यक्ति को गन्ने का जूस पिलाने के लिए बोलते हैं और उसको आंख बंद करके पीना ही पड़ेगा, थोड़ा धैर्य के साथ पिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका वो बीमारी निकलकर एक दिन फिर से वो गन्ने का जूस उसको मीठा लगने लगेगा। ठीक वैसे मुझे याद आ रहा है, हम वृंदावन में पढ़ाई कर रहे थे वो भक्ति शास्त्री, तो हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाया गया, तो हमने सुना वो कृष्ण का भक्ति क्या क्या, कितने सारे भक्ति होते हैं, भाव प्रेम है ना, तो वो सारे चीजें, और अभी देख रहे हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो इतना कन्फर्म हो गया कि ऐसी भक्ति हम कभी नहीं कर सकते हैं। क्या प्रयास करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी शंका होने लगा। फिर ये श्लोक याद आया, उत्साह निश्चय धैर्य, नहीं उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि एक दिन उसे प्राप्त करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोले कि 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, इस्कॉन में लगे रहो और एक दिन तुम्हें गोलोक वृंदावन हम ले जाएंगे। और गोलोक वृंदावन जाने का योग्यता क्या है? जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि खाली 16 माला जप करो और 4 नियम पालन करो और गोलोक वृंदावन जाओगे। तो उसका क्या मतलब हुआ? उत्साह निश्चय धैर्य के साथ हम अगर यही टिके रहेंगे और ये हरे कृष्ण करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से ये कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा और हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। ये उसका अर्थ है। तो ये जो श्रवण और कीर्तन, इसमें एक बार रुचि होता है व्यक्ति को, तो जिन व्यक्तियों ने श्रवण और कीर्तन में रुचि लेना प्रारंभ कर लिए हैं उनके लिए कोई भी भौतिक सुख मायने नहीं रखता है। हम सब अपने आप को टटोल सकते हैं, तो मतलब एग्जाम कर सकते हैं अपने आप को, कितना प्रतिशत भौतिक चीजों में हमारा इच्छा छूट चुका है, उतना प्रतिशत कृष्ण की भजन कीर्तन में हमारा रुचि हुआ है, या जितना प्रतिशत कृष्ण की श्रवण और कीर्तन में रुचि हुआ है उतना प्रतिशत हमारा भौतिक रुचियां कम हुआ है। ये मापदंड है हमारा भक्ति का। मगर समस्या क्या है, कभी कभी हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम सही चीज कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कुछ ऐसे वस्तुओं के प्रति हमारा आसक्ति या हमारा लोभ रहता है, हमें कभी कभी लगता है कि ना ये तो मैं कृष्ण के लिए लोभ कर रहा हूँ या सेवा के लिए लोभ कर रहा हूँ। मैंने जब इस अध्याय का सारांश पढ़ रहा था श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ, वहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यह विधि युक्त वैराग्य कहलाती है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा के लिए सर्वथा उपयुक्त है। कौन सी विधि? जो विधि श्रील अम्बरीश महाराज करते थे। श्रील अम्बरीश महाराज एक राजा थे, ऐश्वर्यपूर्ण, अत्यंत शक्तिशाली। उस समय उनके जैसा कोई शक्तिशाली राजा नहीं थे, सब कुछ ऐश्वर्य उनके पास था, फिर भी इन सारे वस्तुओं से वो विरक्त रहा करते थे। ये मापदंड है, इसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। भौतिक वस्तुएं हैं, हमारे भोग के लिए भी उपलब्ध हैं, हम चाहे तो भोग कर सकते हैं, मगर व्यक्ति उन वस्तुओं को भोग ना करके उनको कृष्ण की सेवाओं में लगाए या उन वस्तुओं से किसी भी प्रकार का आसक्त न हो, ये एक प्रकार का मापदंड है हमारे भक्ति का। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये युक्त वैराग्य, और खास करके श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये युक्त वैराग्य के बारे में कहते हैं, वे लोग कैपेबल हैं युक्त वैराग्य को करने के लिए। हमारे अंदर वैराग्य ही नहीं तो युक्त वैराग्य किधर से करेंगे? तो कभी कभी हम ये गलती कर बैठते हैं, कुछ वस्तुओं को हम व्यवहार में लाते हैं और सोचते हैं कि कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूं, मगर उसके द्वारा कृष्ण की सेवा नहीं खुद की व्यवहार में ज्यादा लगाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें सब पता नहीं लग पाता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए बहुत चेतावनी यानी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। खैर, यहाँ पर श्रील अम्बरीश महाराज की जो प्रजाओं का गुणगान किया गया है, श्रील प्रभुपाद ने एक श्लोक बतलाते हैं, नारायण परा सर्वे न कुछ न बिभ्यति। जो नारायण परा होते हैं यानी जो कृष्ण के भक्त होते हैं, भगवान नारायण के भक्त होते हैं, न कुत्सन बिभ्यति, वो किसी को नहीं डरते हैं, किसी भी परिस्थिति को नहीं डरते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसी को नहीं डरते हैं। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। इस मृत्यु को भी नहीं डरते हैं। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को नहीं डरता है तो और कौन सा वस्तु या और कौन सा व्यक्ति बच जाता है संसार में जिसको वो डरेगा? तो कभी कभी ये दुखदायी बात है, ऐसे दिखाई पड़ते हैं, भले ही हम कई दिनों से ये कृष्ण भावनामृत में है या फुल टाइम है या हाफ टाइम है या वीकली है, जो भी भक्त है, बहुत दिनों से होने के बावजूद भी इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। कि जो नारायण पराभक्त है वो किसी बात को नहीं डरता है। कभी कभी हमें बहुत शर्म आता है कहने पर, कई भक्तों का प्रश्न रहता है फुल टाइम होने के बाद बुढ़ापे में क्या होगा। अरे हम तो अभी देख रहे हैं जो जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को निकाल देते हैं थोड़ा सा गलती पर, इस्कॉन से थोड़ा उसने पूरा जिंदगी दे दिया और थोड़ा सा क्या गलती किया उसको निकाल दिया इस्कॉन से मंदिर से, फिर उसका कौन देखभाल करेगा। फिर हम बूढ़ा हो जाएंगे तो हमारा हम कौन देखभाल करेगा। ये तो जो फुल टाइम तथाकथित फुल टाइम भक्तों का प्रश्न है कि हमारा कौन देखभाल करेगा। तो इस बात को याद रखना चाहिए, नारायण पराभक्त वो किसी को नहीं डरते हैं, किसी भी परिस्थिति को नहीं डरते हैं, हर समय कृष्ण उनका भरण पोषण करेंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, निश्चित रूप से कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर ये बात दृढ़ता से विश्वास हो गया है वो किसी भी परिस्थिति को नहीं डरेगा। कल मेरा क्या होगा, दो चार पैसा नहीं रखूंगा बैंक में कलेक्शन करके अभी से तो कल मेरा को कौन देखेगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, शादीशुदा नहीं किया हूँ, घर बार छोड़ के भी आ गया हूँ, पैसा नहीं रहेगा तो कौन देखभाल करेगा मेरा, इसलिए थोड़ा अभी से रख लेता हूँ। दिस इज टू नॉनसेंस। उतना नहीं, गृहस्थ भक्त जो फुल हाफ टाइम नहीं वो भी फुल टाइम हो सकते हैं, ऐसे कई सारे हैं, हम बहुत सारे हैं जो किस बात को ध्यान नहीं देते हैं। हम सारे भक्तों को चाहिए कि कृष्ण हमारे सर्वोपरि है, वे हमारे स्वामी है, और स्वामी हमेशा उनके अधीनस्थ व्यक्तियों को या उनकी शरणागत भक्तों का रक्षा करते हैं, शरणागत को कभी नहीं ठुकरा देते हैं। एक बार अगर कोई व्यक्ति बोल दिया कि हे कृष्ण मैं आज से तुम्हारा हूं, तो फिर अपना राज्य भी दे देंगे वो, है ना। उनको प्रश्न किया गया था, ओ विभीषण जी आए और आपने बोल दिया कि तुम लंकेश हो, लंका के राजा, कल रावण आएगा बोलेगा आपके शरण में, तो मैं उसको मेरा राज्य दे दूंगा, ये भगवान है। तो इस बात का विश्वास होना चाहिए। तो कई दिनों तक हम भक्त बन जाते हैं। एक बार मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, कई भक्तों से भी हमने चर्चा किया, एक भक्त को हमने फोन किया कि प्रभु जी मंदिर में फेस्टिवल हो रहा है, आप लोग सब आ रहे हैं ना। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली क्या हुआ, ऐसे ऐसे समस्या हो गया घर में, ये त्योहार आ गया घर का, तो सभी लोगों के घर में रहना आवश्यक है। मैंने प्रभु जी आप ऐसे कैसे बोल सकते, आप तो दीक्षित भक्त हैं, सबसे बड़ा त्योहार तो मंदिर का है, कृष्ण का त्योहार है, श्रील प्रभुपाद जी का त्योहार है, हमारा आपका कौन सा त्योहार आन पड़ी, छोड़ो जान दो, आपका बच्चे को तो भेज दो। प्रभु जी आप बच्चे को मत बोलिए, वो ऐसे कर करके बार बार मंदिर जा जाकर उसका पढ़ाई सब नष्ट हो गया है, उसको स्कूल में चिल्ला रहे हैं उसका पढ़ाई नष्ट हो रहा है करके, उसको डर है कि ब्रह्मचारी बन जाएगा। और वो दीक्षित भक्त है, ये चिंता नहीं है कि उनको, ये चिंता है कि कल क्या होगा, मेरा बेटों का, मेरा बच्चों का, मैं त्योहार नहीं करूंगा तो मेरा परिवार का रिश्तेदारों का क्या होगा, वो चिंता है। ये चिंता नहीं कृष्ण की जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे, वो त्योहार कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। इसलिए सारे शिक्षाओं को देने के बाद ही उनको दीक्षा दिलाना चाहिए या दीक्षा देना चाहिए। जितने भी बड़े चढ़े या काउंसलर या जितने भी प्रचार में प्रमुख हैं, सारे भक्तों को हमें ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों को शिक्षा देना चाहिए क्या है कृष्ण भावनामृत, क्या है प्रभुपाद जी के प्रति शरणागति या कृष्ण के प्रति शरणागति, उस चीज को ध्यान देना चाहिए। इस श्लोक से भी शिक्षा ले सकते हैं, वो क्या, अम्बरीश महाराज प्रजा इतने सुंदर कैसे हैं, क्योंकि राजा उतना सुंदर है। प्रजा देवता तुल्य कैसे हैं, क्योंकि राजा देवता है, राजा देवता है, इसलिए प्रजा देवता तुल्य है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो चाहे देश हो, अगर वहां का मुखिया एक चावल की दाने से बना हुआ है तो उनके प्रजाओं का ग्लोरिफिकेशन पूरे संसार में होगा, पूरे संसार में होगा। कैसे राजा थे उनका एक्टिविटीज क्या था राजा का, पड़ोस राज्य कैसे हमारे राज्य में मिल जाएगा, उस राज्य को कैसे परास्त कर दूं मैं, दूसरे दूसरे राज्य की लड़कियों से कैसे शादी कर लूं मैं, ये सारा इच्छा नहीं था उस राजा का, ये सारा कार्य नहीं था उनका। क्या कार्य था उस राजा का, सबे मना कृष्ण पदार बिंदयोर वंशा शिवैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकाराच्युत कथोदय। मन कृष्ण में, हाथ मंदिर धोने में, पैर मंदिर को चल के जाने में, इन सारे कार्यों में वो राजा लगा हुआ था। इसीलिए उस राजा की प्रजा कैसे थे, श्रवण और कीर्तन में पटु, और श्रवण और कीर्तन में पटु होने के कारण उनके अंदर सारे देवताओं के गुण परिलक्षित हो रहे थे। और उस प्रजाओं के बारे में श्रीमद् भागवत, उन प्रजाओं का कथा से उस राजा के कथा श्रीमद् भागवतम में स्थान मिला। तो गुणगान किसका हो रहा है, राजा का। राजा उस प्रकार के थे तो राजा ऐसे होना चाहिए, राजा को अपना आचरण ऐसे रखना चाहिए कि प्रजा उनसे सीख सके, प्रजा उनसे सीख सके। तो हम सही तरीके से अगर नियमों को, रूल रेगुलेशंस का पालन करेंगे तभी दूसरे लोग पालन करेंगे। और हमको ऐसा नहीं करना, या जैसे राजा लोग सोचते हैं दूसरे दूसरे देशों को मेरे देश में मिला दूं, ऐसे नहीं, दूसरे कितना लोगों को हो सके उतना मेरे गैंग में जुड़ा दूं और मेरा गैंग बढ़ता रहेगा, मेरा नाम रोशन होता रहेगा, सब लोग भा भा करें, तालियां मारेंगे, महाराज जी आ गए, फूल हार चढ़ाएंगे, वो कोई काम का नहीं है। अपना मन पहले श्रवण कीर्तन में लगाना है और साथ साथ में शिक्षा देना है, खुद का आचरण बढ़ाना है, फिर दूसरों को शिक्षा देना है, तब उनका गुणगान होगा। अगर शिष्य लोगों का गुणगान होता है तो वो गुणगान किसका, गुरु जी का, वो गुरु जी का। तो गुरु को वैसा आचरण करके शिष्यों को सिखाना चाहिए, ना कि मेरा नाम कैसे आगे आएगा उसका प्रयत्न करना चाहिए, नहीं। तो इस बात को हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अगर खुद की प्रशंसा, खुद की नाम, खुद क्या गुणगान, मैं बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं, या मैं मैनेजर हूं, इन सब के पीछे या इन सब के चक्कर में पड़े रहेंगे तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत लोगों को जमा कर देंगे, कितने भक्त बनाएंगे, बहुत सारे लोग दीक्षा लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग तिलक कंठी पहने हुए, कितने शरणागत हैं, कितने सब कुछ समझ रहे हैं राधा गिरधारी मंदिर को, या कितने लोग राधा गिरधारी मंदिर को मेरा सब कुछ है समझ के, मेरा पहला ड्यूटी राधा गिरधारी में, बाद में मेरा ऑफिस में करके सोच के सेवा कर रहे हैं, कितने, कैसे होगा ये। जब राजा बदलेगा फिर वो शिक्षा देगा। तात्पर्य के अंतिम लाइन में क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद, अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दी थी, कैसी शिक्षा, जैसे वो करते थे, वो खुद जैसे पालन करते थे वैसी शिक्षा दी थी उन्होंने, जिसके कारण प्रजा किसी भी भौतिक सुख के पीछे आसक्त नहीं हो रहे थे। स्वर्ग और क्या बच गया भौतिक सुख में, अगर ऐसी शिक्षा हम देंगे प्रजाओं को, वो क्यों घर गृहस्थी में, वो क्यों दूसरे दूसरे धन प्राप्ति में, वे क्यों दूसरे दूसरे चीजों के प्रति आसक्त हो पाएंगे होंगे, अगर ऐसी शिक्षा हम देंगे अपने अपने अनुयायियों को। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कैसे मैं आचरण करूं और कैसे इस प्रकार की शिक्षाओं को मेरे अनुयायियों को दूं, या श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों को दूं। अम्बरीश महाराज करते थे और ऐसी शिक्षा दिए थे, इसलिए उनके प्रजा स्वर्ग में जाने के लिए भी इच्छुक नहीं थे, क्योंकि स्वर्ग से भी ज्यादा सुख उनको यहां मिल रहा था श्रवण और कीर्तन में। ये सुख की बात आया तो मायापुर की एक क्लास मुझे याद आ रहा है। एक महाराज क्लास दे रहे थे, शायद अफ्रीका के महाराज थे, वो बता रहे थे कि देवता लोग क्या भोग करते हैं, हम हरे कृष्णा वाले उनसे ज्यादा भोग करते हैं। तो किसी ने कंप्लेन किया, हम लोग भोग करने के लिए यहाँ आए क्या? बोले कि नहीं, भोग करने के लिए नहीं आए, मगर हमको क्या क्या मिल रहा है वो तो देखो। भोग करने के लिए नहीं है, ठीक है, हरे कृष्णा, मगर क्या क्या मिल रहा है। खास करके हम जो स्तन में रहते हैं, एक 50,000 1,00,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति भी ऐसे ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जी पाता रहेगा जैसे हम लोग रहते हैं। और उतना अच्छा प्रसाद नहीं, उतना अच्छा खाना नहीं खा पाता रहेगा जितना अच्छा प्रसाद हम लोग खाते हैं। यानी उनसे ज्यादा कई गुणा ऐसो आराम की जिंदगी हरे कृष्णा में है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा ऐसे बना के गए हरे कृष्णा को, मगर उद्देश्य भोग करना नहीं है। कभी कभी एक मजे की बात है, कभी कभी एक बाहर के व्यक्ति या कुछ ऐसे ऐसे भक्तों से मिलते हैं, वो कभी अगर भौतिक दुनिया के सुख के बारे में या भौतिक जीवन के बारे में बताते हैं, तो मैं उनको कभी कभी ऐसा बोलता हूँ, तुमको क्या मिलेगा यार हरे बाहर रहकर, चल मैं हरे कृष्णा में दिखाता हूँ। देख मैं कुछ, हम कुछ नहीं करते हैं, कोई नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, पैसा कमाने नहीं जाते, मगर हम दावा दे सकते हैं तुमको 1,00,000 रुपया महीने में कमाने वाला व्यक्ति से भी और ज्यादा आराम से हम लोग रहते हैं, तुम ऐसा नहीं रह पाएगा, कितना कमाएगा बताओ। सब कुछ है इस्कॉन में, सब कुछ, भौतिक सुख चाहिए तो वो भी सब कुछ मिलेगा, है ना, डिजायर ट्री है, जो इच्छा करेगा वो मिलेगा यहाँ पर। डिजायर ट्री मीन्स कल्प वृक्ष, तुमको भौतिक सुख चाहिए वो भी मिलेगा, मगर यही फंसते रहोगे। आध्यात्मिक चाहिए तो उसका सीमा ही नहीं है, है ना। तो सब आके इसके भौतिक सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्यों? शिक्षा की अभाव है। अगर हमें सही शिक्षा मिलेगी कि नहीं यहाँ पर भौतिक, अभी अमरीश महाराज के राज्य में किस चीज की कमी थोड़े ना था, जैसे रावण राज्य, राम राज्य के बारे में हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं, रावण राज्य कम थोड़े ना था, रावण राज्य भी राम राज्य जैसा था। रावण राज्य में किसी भी प्रकार का कंप्लेंट्स नहीं था राजा के पास, सब लोग ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे थे रावण राज्य में। उनका राज्य रात को ज्यादा चलता था, बियर बार है ना, दारू के अड्डे हैं, वेश्यालय, ये सब ज्यादा चलेगा रात को, और कोई मारपीट झगड़ा नहीं, क्योंकि रावण का डर था, सब सिस्टमेटिक, किसको कितना दारू चाहिए उतना मिल जाएगा, झगड़ा नहीं करने का। रावण राज्य अच्छा राज्य कौन सा है? जिस राज्य से कंप्लेन नहीं आता है, तो रावण राज्य भी अच्छा था, मगर राम राज्य का गुणगान क्यों? तो यहाँ पे अमरीश महाराज अपने प्रजाओं को चाहे तो सुख दे सकते थे, भौतिक सुख, उनके पास किस चीज की कमी थी? सब कुछ था ऐश्वर्य उनके पास, नहीं, उन्हें क्या शिक्षा दिया? श्रवण और कीर्तन की, श्रवण और कीर्तन की, श्रवण और कीर्तन की शिक्षा दिया। अतः इस इतना भोग और ऐश्वर्य होने पर भी उनके प्रजाओं ने श्रवण और कीर्तन में मग्न रहा। तो भले ये सब है हमारे पास, गाड़ी बंगला अच्छा अलीशान आश्रम सब कुछ है, मगर अगर हमें शिक्षा मिलेगी कि हमें श्रवण और कीर्तन में रुचि लेना चाहिए, इन सारे चीजों में नहीं, तब जाकर उसके प्रति रुचि बढ़ेगी, तब जाकर हम निर्भय हो पाएंगे, नारायण परा समझ पाएंगे अपने आप को, या अपने आप को बना पाएंगे। नारायण परा, जब वो नारायण परा होगा, जब वो निर्भय होगा, तब जाके ऐसी मनस्थिति में उसे स्वर्ग, मृत्यु की सुख या नरक, ये तीनों एक जैसा लगेगा। कैवल्य नरकायते, उसको मुक्ति भी नरक जैसा लगेगा। मुक्ति की वांछा जो करते हैं बड़े बड़े मुनि ऋषिगण, तपस्या करके, ध्यान करके, योग करके, इस प्रकार की मुक्ति भी उसको कैसे लगेगा? नरक की यंत्रणा जैसा लगेगा, एक ही चीज में मन लगा हुआ रहेगा। अगर कोई हजारों साल तक तपस्या करके अगर वो आएगा पानी में चल के जाएगा, तो उसको क्या करेगा? कॉमेडी करेगा, यार 1 रुपया दे के मैं नदी क्रॉस कर लूंगा, है ना। ये नारायण परा सिद्धियां, मुक्ति, भोग की वस्तुएं, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और इस संसार के मान और यश और गुणगान क्या किसी चीज के मायने नहीं रखते हैं। नव नारायण बरा एक महाराज का उदाहरण बताऊं नाम के लिए, गौर गोविंद स्वामी महाराज। मैं ऐसे उनका एक किताब पढ़ रहा था हाल में ही, तो एक बार ऐसा हुआ किसी उनके शिष्यों ने या उनके शिष्यों ने किसी ने उनका ज्यादा गुणगान किया, इतना गुणगान किया इतना गुणगान किया, और कोई कोई बोलते बोलते बोल दिया श्रील प्रभुपाद जी के बाद आचार्य गौर गोविंद स्वामी महाराज। ये बात गया जीबीसी में, जीबीसी बुलाया गौर गोविंद स्वामी महाराज को, आपने ऐसा बोला या प्रभुपाद जी के बाद आप आचार्य है, आपका इतना गुणगान हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। गौर गोविंद महाराज उनको समझाए, फिर बाद में आए अपने सारे शिष्यों को बुलाए, बुलाए कि आप लोग कितने अच्छे शिष्य हैं, आप लोग कितना अच्छा मेरा ध्यान रखते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस, आप लोग कितना गुणगान कर रहे हैं मेरे, मगर मूर्खो तुमको पता नहीं तुम गुणगान नहीं कर रहे हो, मेरे सर के ऊपर पिशाब कर रहे हो और टट्टी कर रहे हो। तो ग्लोरिफिकेशन उनको कैसे लग रहा है, मेरे सर के ऊपर पिशाब और टट्टी कर रहे हो तुम लोग, मेरा ग्लोरिफिकेशन थोड़े कर रहे हो। ये नारायण परा, एक बार अगर श्री कृष्ण में मति लग जाता है तो किसी भी ग्लोरिफिकेशन उनको सुख नहीं देता है। और कैसे हंकरिंग होगा कि मेरा गुणगान हो, मेरा बढ़ावा हो करके, है ना। तो इससे अतः खास करके सार रूप में श्लोक का यही है कि अमृत महाराज की प्रजाओं ने देवता तुल्य थे क्योंकि श्रवण कीर्तन में मग्न थे। श्रवण कीर्तन में जो मग्न रहते हैं उनको स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं रहता है। और सार हमें क्या समझना है, अगर हमें देवता तुल्य या सुख को प्राप्त करना उससे बढ़कर, तो हमें श्रवण और कीर्तन में मन लगाना पड़ेगा। और क्या शिक्षा है, ये जो गुणगान है प्रहलाद अमृत महाराज की प्रजाओं का नहीं, अमृत महाराज का गुणगान है, क्योंकि वे श्रवण और कीर्तन में मग्न थे अतः, और उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा प्रजाओं को दिए थे इसीलिए उनकी प्रजा इस प्रकार से थे। इसलिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें भी इस प्रकार के श्रवण और कीर्तन में मग्न होना चाहिए, और खास करके जो लीडिंग पोजीशन में है हम लोग उन्हें ध्यान देना चाहिए कि खुद को इस प्रकार के आचरण करें, ताकि हमारे शिक्षा हमसे जो सीख रहे हैं उन लोगों को भी इस प्रकार की अनुयायी बना सकें। सार रूप में इस श्लोक में यही जो थोड़ा बहुत समझ में आता है। हम क्षमा चाहते हैं, दोबारा कमल लोचन प्रभु होते तो कुछ सिद्धांतिक बताते और कुछ, है ना, बहुत अच्छी तरह से, मगर हम कुछ नहीं बता पाए, ऐसे थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर इसमें कोई त्रुटियां रहेगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग क्षमा करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा अगर कोई भक्त कुछ कमेंट देना चाहते हैं या कुछ अधिक बताना चाहते हैं वे बता सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। कोई बताएंगे कमेंट्स या कुछ प्रश्न नहीं, कोई कमेंट बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।